आयत नंबर 60 का निचोड़ क्या हमारे सामने आया कि औरत जीनत तो कर सकती है, खा जवान हो या बूढ़ी, लेकिन अपनी उस जीनत का इजहार जो है वो बाहर के लोगों में नहीं कर सकती, यानी गैर महरमों में नहीं कर सकती, जब वो घर से बाहर निकले तो नहीं कर सकती। और आप देखें कि जवान तो जवान, आयत 60 सूरत नूर की हमें क्या बता रही है कि बूढ़ी औरतें भी जो हैं उनको इस बात की इजाजत तो है कि उनके कपड़े जो हैं वो अपने हल्के कर लें, घर से बाहर निकलते हुए जायद कपड़े जैसे बुरका है, चादर है, उसको उतार दें, लेकिन शर्त है साथ कि फलैसा अलैहिन्ना जुनाहुन अन यदाना सियाबहुन, कि वो अपने कपड़े उतार कर जो है वो जायद कपड़े उतार सकती हैं, उन पर कोई गुनाह नहीं है, लेकिन शर्त क्या है, गैर मुतबर्रजातिन बिज़ीना, बशर्ती के वो जीनत की नुमाइश करने वाली न हो, उनके अंदर निकाह की रगबत ना हो और निकाह की उम्मीदवार ना हो और जेब जीनत का इजहार करने वाली ना हो, तो फिर वो जो है वो जैसे बुरका या बड़ी चादर, क्योंकि बुढ़ापे में उसका संभालना मुश्किल है, तो अल्लाह ताला ने उसकी रियायत जो है वो दी है। लेकिन अगर बुढ़ापे में भी उनके अंदर ये जरासीम पाए जाते हैं या ये ख्वाहिश उनकी दबी हुई है, ये चिंगारी मौजूद है सिनफी ख्वाहिश की या जेब जीनत का इजहार करने की, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि फिर जो है वो इस रियायत से फायदा नहीं उठा सकती। लेकिन जो है फर्ज किया, अब उनके अंदर ये जज्बात तो नहीं है, ये एक रियायत है कि वो चादर उतार दे, जरूरी नहीं है, क्योंकि क्या कहा कि वहीं यस्ताफिफना खैरुल्लाहुन, कि उनके लिए फिर बेहतर यही है कि वो जो है वो इफ्फत माबी इख्तियार करें, वो हया दियारी इख्तियार करें, तो ये ज्यादा उनके हक में जो है वो अच्छा है। फिर आप देखिए कि इसके बाद अल्लाह ताला जो खाने पीने के आदाब हैं उनका जिक्र करते हैं, क्योंकि लोगों के जहन में ये ख्याल पैदा हुआ कि अब जैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब पर्दे के अहकामात जो थे वो नाजिल कर दिए, तो पर्दे का मकसद जो है वो मुआशरती जो रवाबित हैं उनका काटना नहीं है। तो क्या क्यों ये आयात नाजिल हुई, क्योंकि घरों के अंदर जाने पर पाबंदियां आयद कर दी गई, नजर का पर्दा और इजाजत लेकर आओ, सलाम करो, और घरों के अंदर रहते हुए भी आप इजाजत लें, और बहुत से ऐसे अहकाम कि अब औरत जो है वो जेब जीनत के साथ जो है वो सामने दूसरों के नहीं आ सकती। तो अब जो है लोगों ने ये महसूस किया कि इस्लाम सोशल जो आजादी है उसको महदूद करना चाहता है, तो खास तौर पर आम नहीं बल्कि खास तौर पर लोगों ने यह महसूस किया कि वो अपने अजीज जो हैं, उनके जो करीबी रिश्तेदार हैं या फिर जो उनके दोस्त हैं, अब उनके घरों में वो आजादी के साथ जो है वो बेतकल्लुफी के साथ आ जा नहीं सकते, और फिर खास तौर पर माजूर और मजबूर लोग। और अब आप देखें कि बाद जो कमजोर थे, ज़ईफ थे, मजबूर थे, तो उनका तो गुजारा ही इस बात पर था कि वो अपने रिश्तेदारों के घर जाते थे और वहां पे जाकर जो थे वो खाना खाते थे, या वहां पे जाकर जो थे वो अपनी जो ख्वाहिश थी गुजर औकात की उसको जो है वो पूरा करते थे। तो ये जो पाबंदियां थी ना, आप ऐसी आजाद ऐसी सोसाइटी जो बड़ी ही बेतकल्लुफ और आजादाना फल फूल रही थी, उसके लिए ये पाबंदियां बड़ी शाक गुजरी। तो इसलिए जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खाने पीने के आदाब भी जो थे वो नाजिल कर दिए। क्या फरमाया, लैसा अलल आमा हरजुन, नहीं है अंधे पर कोई हरज, नहीं है अंधे के लिए कोई तकलीफ, वला अलल आरजी, और ना ही लंगड़े के लिए, हरजुन कोई हरज कोई तकलीफ, वला अलल मरीदी, और ना ही किसी मरीज के लिए हरजुन कोई हरज, वला अला अनफुसिकुम, और ना तुम्हारे अपने नफ्सों पर। तो हरज आप खुद ही फिर आगे लगाएंगी, क्योंकि ये अरबी का जो है हुसन है, अरबी अदब का, और वैसे भी किसी भी अदब का, किसी जबान का, कि एक लफ्ज को आप बार बार रिपीट नहीं करते, है ना। और तो दूसरी बात क्या है, और ना ही तुम्हारे अपने ऊपर कोई मजायका है, हरज है किस बात का, कि अंता कुलू मिन बयूतेकुम, नंबर एक, कि तुम अपने घरों से खाओ, और बयूते आबाएकुम, या अपने बाप दादा के घरों से खाओ। औ बुयूते उम्महातिकुम, नंबर तीन, या अपनी माँ नानी जो है उम्महात यानी उनके घरों से खाओ। औ बुयूते इख्वानिकुम, या अपने भाइयों के घरों से खाओ। औ बुयूते अखवातिकुम, या अपनी बहनों के घरों से खाओ। औ बुयूते अमामिकुम, या जो है वो अपने चचाओं के घरों से। औ बुयूते अम्मातिकुम, या अपनी फुफियों के घरों से। औ बुयूते अख्वालिकुम, या अपने मामुओं के घरों से। औ बुयूते खालातिकुम, या अपनी खालाओं के घरों से। औ मा मलकत, या फिर मालिक हुए जिनके मफातिहू, जिनकी कुंजियों के, या फिर उन घरों से जिनकी कुंजियां जो हैं उनके तुम मालिक हो, तुम्हारी सुपुर्दगी में दे दी गई हैं। और सदीकेकुम, या फिर अपने दोस्तों के घरों से। तो ये 11 जो है वो लोगों का अल्लाह ताला ने यहाँ पे जिक्र किया और फिर कहा लैसा अलैकुम जुनाहुन, इसमें फिर कोई हरज नहीं है कि अंताकुलू जमीन, कि तुम सब मिलकर खाओ। और अश्ताता, या अलग अलग। फाइजा दखल तुम बयूतन फसल्लिमु अला अनफुसिकुम, अलबत्ता जब घरों में दाखिल हुआ करो तो अपने लोगों को सलाम किया करो। तहियतम मिन इंदिल्लाही, ये तोहफा है, ये हदिया है, ये तहिया है अल्लाह की तरफ से। मुबारकतन, बड़ी बाबरकत है, मुबारक है, तय्यबा पाकीजा। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाती, इसी तरह अल्लाह ताला बयान करता है तुम्हारे सामने आयात। लअल्लकुम ताकिलून, तवक्को है कि तुम अकल से काम जो है वो लोगे। अब आप यहाँ पे गौर करें कि जिक्र ये हो रहा है कि अंधा या जो है वो अंधा या फिर लंगड़ा जो है और या फिर मरीज जो है वो अगर किसी के घर से खा ले तो इसमें जो है वो कोई हरज नहीं है। और आप देखें कि अंधा जो होता है वो देख नहीं सकता है ना, उसको नजर नहीं आता। तो अब होता क्या था कि अंधा या माजूर आदमी है तो अब जब उसको खाने में नजर ही नहीं आ रहा और वो किसी के घर में पहुंचा है तो हो सकता है कि वो जो खाने का उसूले अदल है वो उसको बरकरार ना रख सके, ठीक है ना। अब वो किसी के घर पहुंचा है, खाना खा रहे हैं, अब देखें कि अंधा है, माजूर है, उसको नजर नहीं आता। ये हो सकता है कि वो दूसरों का हिस्सा भी खा जाए, है ना, जब प्लेट में या डोंगे में, क्योंकि आप जब खाना लेते हैं आप इस निस्बत से लेते हैं कि सबको मिले और हर चीज हर एक के अंदर एक अदल और मुसावात के साथ तकसीम हो जाए, तो लेने वाला ख्याल रखता है और बाजू का पूछते भी हैं। और है अब अंधा जो है उसको नजर ही नहीं आ रहा, तो और अब क्या है कि जब वो खा रहा है तो हो सकता है कि वो दूसरों का हिस्सा खा जाए। फिर ये कि अब वो खाते वक्त उसका हाथ कहीं कहीं लगेगा, कभी प्लेट के अंदर, कभी प्लेट के बाहर, और ये भी हो सकता है कि मुंह मुंह में सही से ना डाले, उसका खाना गिरे, क्योंकि वो मजदूर आदमी है ना। तो अब यहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है क्या बात बताई कि हो सकता है अंधा जो है वो सही से खा ना सके, वो उसको नजर नहीं आता, वो सही से वक्त पर पहुंच ना सके, जो उसकी निशिस्त है बैठने की वो सही तरह उस पर बैठ ना सके। तो अब इसमें जो है कोई हरज नहीं है कि अगर अंधा जो है वो तुम्हारे साथ आकर जो है वो खा लेता है। और आप देखें कि हमारे यहाँ क्या होता है कि जो हम ये समझते हैं कि इस्लाम की बजाय आज के दौर में मगरिब में जो भी इस तरह के डिसेबल लोग हैं या डिस एबल पीपल हैं, माजूर लोग हैं, मगरिब जो है वो उनका बड़ा ख्याल रखता है जी। वहाँ तो गाड़ियाँ ऐसी हैं कि वो खुल जाती हैं तो लोग ऊपर माजूर बैठ जाते हैं जी, उनके लिए व्हील चेयर है, उनके लिए खुराक है, उनके लिए औरतें घर मतलब लोग आते हैं जो उनकी मदद करते हैं। तो आप देखें कि इतने 100 साल पहले जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में ये आयतें नाजिल कर दी। और आपने सूरत तौबा में भी यह बात पढ़ी थी कि उन पर कोई गुनाह नहीं है जो अंधे हैं या लंगड़े हैं या माजूर लोग हैं, ज़ोफ़ा का लफ्ज़ मेरा ख्याल था, اگر وہ جہاد پر جانے کی قدرت نہیں رکھتے، طاقت نہیں رکھتے تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن باقی لوگوں کے لیے پوچھ تھی اور کہا گیا تھا ان فرو خفافوں و سقالوں وجاہدوا فی سبیل اللہ، کہ نکلو ہلکے ہو یا بوجھل اللہ کے راستے میں نا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک طرف جو معذور لوگ ہیں، اندھے ہیں، ان کا اعتماد جو ہے وہ بڑھاتے ہیں، ان کو تسلی دیتے ہیں. دوسری طرف جو ہے سوسائٹی اور معاشرے میں محبت کی فضا پیدا کرتے ہیں. تو کیا فضا پیدا کی؟ کہ اگر وہ لوگ تمہارے ساتھ کھانا کھائیں تو اس میں جو ہے وہ کوئی اس میں حرج نہیں ہے. ایک تو اس کے یہ معنی ہے. دوسرے اس کے معنی یہ ہیں کہ جو بڑے متقی لوگ تھے، جو صحابہ اور صحابیات نیک تھے، جب قرآن میں پے در پے جو تھے وہ ایسے احکامات نازل ہونے لگے، اور ان احکامات میں جو خاص طور پر بات تھی وہ یہ تھی کہ تم دوسروں کے مال جو ہے وہ باطل طریقے سے نہ کھاؤ، تو دوسروں کا حق نہ لو. تو جو متقی صحابہ تھے ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اندھے کے ساتھ، معذور کے ساتھ اگر ہم نے کھانا کھایا تو ہو سکتا ہے عدل اور مساوات کو قائم نہ رکھ سکے. دونوں ہی باتیں صحیح ہیں. ایک تو یہ کہ وہ اندھا اور معذور جو ہے وہ جن کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے ان کے ساتھ ہو سکتا ہے وہ عدل نہ کر سکے، تو لوگوں کے دلوں میں تنگی پیدا ہو، یہ تو سارا ہی کھا جاتا ہے، یہ تو گراتا ہے، اس کو تو تمیز نہیں ہے، اس کو تو ادب نہیں ہے، ہے نا. اور آپ دیکھیں گھروں کے اندر بھی جو بوڑھے ہیں، بوڑھی بوڑھیاں ہیں، نانی دادی، بعض بچے بعض بڑے، وہ ڈس ایبل ہیں، دماغی لحاظ سے کمزور ہیں، بول نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، سلو ہیں. اس کو بھی باہر، تو باہر گھر والے بہن بھائی بھی ان کو برداشت نہیں کرتے نا، کبھی ہنستے ہیں ان کی کسی حرکت پر، کبھی ان کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی یہ دیکھتا کیسے ہے، یہ بیٹھتا کیسے ہے. میرے پاس خود نیو یارک میں جو ہے وہ ایک عورت جو تھی وہ آئی، اور یہاں کی کینیڈا کی بھی بات ہے کہ ایک عورت آئی، تو مطلب ان دونوں کے بچے جو پتا چلے وہ کیا تھے، معذور تھے، کمزور تھے عام بچوں کی نسبت، وہ سلو تھے. تو مائیں بڑی افسردہ تھیں کہ ہمارے جو بچے ہیں، یعنی عمر کے لحاظ سے یہ بڑھ رہے ہیں لیکن ذہن ان کا، جیسے 10 سال کی اگر بیٹی ہے تو ذہن اس کا 6-7 سال کا ہے، 5 سال کا ہے، اپنی ایج سے وہ آدھا ہے اس کا ذہن. تو ذہنی نشو نما کی جو کمی ہے وہ اس میں بڑی صحیح حرکتیں نہیں کرتی. تو جس میں اسکول کے بچے، کلاس کے بچے ان پر جو ہیں وہ ہنستے ہیں، اور مطلب دوست باقی کی سوسائٹی کے بچے ان کو دوست نہیں بناتے، ان کے ساتھ کھیلنا نہیں چاہتے، ہے نا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ اگر آپ کے دوستوں میں یا آپ کے رشتہ داروں میں، یا میں نے کہا کہ دادی نانی جو بزرگ ہمارے گھروں میں موجود ہوتے ہیں، بعض اوقات گھروں میں بیٹیاں ہی، بعض اوقات بہوئیں اپنے جو بچے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ امی آپ گھر ہی رہیں، آپ اتنی دیر کر دیں گی تیار ہونے میں، ہے نا. اور یا پھر یہ کہ آپ وہاں پہ جا کے مطلب وہ آہستہ آہستہ حرکت کرتے ہیں، آپ ان کو آہستہ آہستہ پکڑ کر جاتے ہیں، گاڑی میں بٹھاتے ہیں، ان کا بھی دل چاہتا ہے کہ ہم دیکھیں دنیا کے رنگ، دنیا کے مزے. تو تنگ پڑ جاتے ہیں بچے، اپنی اولاد تنگ پڑ جاتی ہے کہ ضرور باہر لے جانا، کھلانا، یا گھر کے اندر بھی مصیبت ہے، یہ ایک مصیبت ہے، اف کب اس سے جان چھوٹے گی نا. تو یعنی اسلام جو ہے وہ محبت کے جذبات ہمارے اندر پیدا کرتا ہے، توجہ دلاتا ہے. ایک تو یہ کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی جو گھر کے اندر جو ہیں وہ معذور لوگ ہیں، تو ان کے ساتھ ایسا نہ ہو کہ ہم عدل کو برقرار نہ رکھ سکیں، ان کی فیلنگ کا، ان کی خوراک کا، ان کی نشست اور برخاست کا خیال رکھتے ہوئے. اور دوسرا وہ بھی جو ہے وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ گھر والوں کے ساتھ یا دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ کوئی جو ہے ایسا نہ ہو کہ ان کی حق تلفی ہو. لیسا علی الاعمی حرجن. اور آپ دیکھیں کہ حرج جو ہے وہ آپ نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ حرج کے لفظی معنی کیا ہیں. حراجین ہے نا، خاردار جھاڑی کو کہتے ہیں، گھنی جھاڑی، خاردار جھاڑی. اور جو گھنی جھاڑی ہوتی ہے یا خاردار جھاڑی ہوتی ہے، اس میں سے گزرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، کوئی چیز گزر نہیں سکتی نا. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جس طرح سے جو ہے وہ خاردار جھاڑی میں سے کوئی گزر نہیں سکتا، بالکل اسی طرح سے تمہارے دل کے اندر ایسے شکوک اور شبہات نہیں پیدا ہونے چاہیے، کوئی اندیشے نہیں پیدا ہونے چاہیے، تمہارے دل میں تنگی نہیں پیدا ہونی چاہیے کہ تمہارے دل میں ان کے لیے اچھے محبت کے جذبات کا گزر ہی نہ ہو سکے. تم ان سے پیار ہی نہ کر سکو. لیس علی الاعمى حرج, کوئی حرج نہیں کسی اندھے کے لیے, ولا علی الاعرج, اور نہ ہی کسی لنگڑے کے لیے. اب آپ دیکھیں کہ لنگڑا جو ہے وہ بھی معذور ہے, ہے نا, وہ چل نہیں سکتا, پاؤں دونوں ٹھیک نہیں ہیں, ایک پاؤں ٹھیک نہیں ہے, یا ٹانگیں اس کی کمزور ہیں, تو اب وہ بھی کھانے پینے کے اعتبار سے, باقی لوگ اگر کوئی دعوت ہے, کوئی ڈشز رکھی ہیں, کوئی دسترخوان سجا ہوا ہے, فوراً پہنچ جائیں گے, وہ تو فوراً نہیں پہنچ سکتا, ہے نا, ہو سکتا ہے وہ اٹھ ہی نہ سکتا ہو. تو یہاں پہ بھی اللہ رب العزت جو ہیں اس کے حقوق جو ہیں وہ یاد دلا رہے ہیں کہ لنگڑے کے لیے بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر وہ تمہارے ساتھ جو ہیں وہ کھانا جو ہے وہ کھاتے ہیں. تو یہ کیونکہ بعض لوگ پھر پسند ہی نہیں کرتے نا کہ یہ اندھا یہ لنگڑا ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھائے, کہتے ہیں اس کی پلیٹ اس کے کمرے میں ہی بنا دو, وہ اس کو تمیز نہیں ہے, وہ صحیح سے کھاتا نہیں ہے, ایسے ہی پھر ساری محفل پارٹی کا مزہ ہی خراب ہو جائے گا. اب دیکھیں آج کل ہمارے ہاں بھی سوسائٹی میں کیا ہوتا ہے نا, ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کا ایسے لوگوں کے ساتھ دل جو ہے وہ لگتا ہو, پسند ہی نہیں کرتے کہ کوئی معذور ہے تو اس کے بستر کے پاس بستر ہم بچھا لیں, نہیں, اس سے سمیل بڑی آتی ہے, وہ گندا بڑا ہے. اب وہ ہے ہی معذور, اب اس کو اتنی عقل اور سمجھ ہوگی تو پھر اس کو آپ کی ضرورت ہی کیا ہے, ہے نا. تو یہاں پہ کھانے کے آداب بتائے جا رہے ہیں کہ لنگڑے کے لیے بھی کوئی حرج نہیں ہے, کہ اگر کوئی اندھا یا لنگڑا جو ہے کسی کے گھر سے کھانا کھا لے تو یہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے. کیونکہ اس زمانے میں سوسائٹی میں جو ہے وہ یا تو احتیاط کا پہلو اتنا تھا کہ ان کو ڈر لگتا تھا کہ یہ آہستہ کھائیں گے, ہم جلدی کھائیں گے تو ان کا حق تلف نہ ہو جائے, یا پھر یہ تھا کہ وہ پسند نہیں کرتے تھے کہ یہ معذور ہیں. تو دو باتیں تھیں. تیسرا کسے کہا, ولا علی المریض حرج, اور نہ ہی کسی مریض جو ہے اس کے لیے کوئی حرج ہے کہ وہ کسی کے گھر سے جو ہے وہ کھانا کھا لے. اب آپ دیکھیں کہ بیمار جو ہے اس کا معاملہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, بیمار کے ساتھ کھانا کھانا بڑا ہی مشقت کا کام جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے اور مشکل لگتا ہے کہ بیمار کے ساتھ کھانا جو ہے وہ کیسے کھایا جائے نا, کیونکہ بیمار جو ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے بہت سی جو ہے وہ احتیاطیں جو ہیں ان کو ملحوظ رکھا جائے, اور مریض تو جب کھانا بھی کھاتا ہے تو بعض اوقات جو لوگ مریض ہوتے ہیں وہ اپنی مرض کی بات بہت زیادہ کرتے ہیں, دوسرے لوگ تنگ آنے لگتے ہیں کہ پتہ ہے کہ اس کا سر جو ہے اس کے اندر یہ بیماری ہے, یا اس کا پاؤں ٹھیک نہیں ہے, یا اس کو بخار رہتا ہے, یا خدا نہ خاصا یہ کینسر کا مریض ہے, یا بلڈ پریشر ہے, اور یا پھر اس کو شوگر ہے. تو اب شوگر کا پیشنٹ یا بلڈ پریشر کا یا ہارٹ پیشنٹ اب جب کھانے کے دسترخوان پہ بیٹھے گا تو وہ تو کہے گا ہی کہ اس میں چینی تو نہیں ڈالی ہوئی, وہ تو کہے گا ہی کہ آپ نے میٹھا تو نہیں اس میں ڈالا, یا اس کے جو ہیں وہ کتنی جو ہیں کیلریز ہیں, ہے نا. اور آپ دیکھیں کہ ایک بچہ ہے, جیسے ایک چھوٹے سے بیٹی کو میں جانتی ہوں نیو یارک میں, ماں اس کی اسٹوڈنٹ تھی, اس بچی کو جو ہے وہ شوگر ہو گئی, اور وہ بتا رہی تھی کہ گھر کے اندر مجھے اس بچی کی وجہ سے کتنی میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے کہ باقی بچے نارمل غذا کھاتے ہیں اور میں ان کو کہہ کہہ کے تھک جاتی ہوں کہ اس بچی کے سامنے مت کھایا کرو, وہ آئس کریم کھا رہے ہیں, وہ کینڈیز کھا رہے ہیں, وہ چاکلیٹ کھا رہے ہیں, وہ پیزا, سب چیزیں جس میں بہت جو ہے وہ ہیوی غذا ہے, اور وہ بچی کھا نہیں سکتی, اس کو دینا نہیں ہے. تو اب اس کا وہ روتی ہے, اس کا دل خراب ہوتا ہے, اور میرا دل جو ہے وہ کٹتا ہے نا. تو اب مریض کا بھی کھانا کھاتے وقت جو ہے وہ خیال رکھنا, اسی طرح جو باقی بھی لوگ مریض ہیں تو ان کے ساتھ جب کھانا کھایا جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے مرض کا بعض اوقات زیادہ اظہار کرتا ہے, یا یہ بھی ہو سکتا ہے مریض کی وجہ سے آپ کو گھر کے اندر بھی احتیاط کرنی پڑے, جو بھی آپ چیز پکا رہی ہیں بنا رہی ہیں تو آپ احتیاط کریں گی نا, کبھی آئل کی, کبھی نمک کی, کبھی مرچ کی, کبھی مسالوں کی. تو یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ مریض کے لیے بھی جو ہے کوئی مذائقہ نہیں ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر وہ کسی کے گھر سے جو ہے وہ کھانا کھاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ مریض جو ہے نا اس کا ایک معاشرتی بائیکاٹ کر دیا جائے, یا مریض اندھا یا لنگڑا جو ہے ان سے اتنی احتیاط برتی جائے کہ وہ لوگوں کے سہاروں سے محروم ہو جائیں, ہے نا. ایسے رشتے دار, ایسے घर वाले या ऐसे सोसाइटी के लोग, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि उनके रिश्तेदारों में कोई माजूर है, अंधा है, लंगड़ा है, मरीज है, तो उसके घर आए जाएं, उससे मिले जुलें, उससे माशरती ताल्लुकात जो है उसका बाइकॉट ना कर लें, है ना। इंफरादी तौर पर भी और तकरीबात में इज्तमाही तौर पर भी इन चीजों पर कोई पाबंदी नहीं है। क्या है कि वो आप लोग क्या करें कि वहां पे ये लोग जो है खाना आपके साथ मिलकर जो है वो खा सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा मरीज है कि जैसे जरासीम वगैरह भी फैलने का अंदेशा है, तो घर वाले उनका उसका बर्तन अलग रख सकते हैं, एहतियाती तदाबीर अब इतनी ज्यादा है उनको इख्तियार कर सकते हैं, लेकिन उनकी फीलिंग हर्ट नहीं होनी चाहिए, उनका दिल जो है वो खराब जो है वो नहीं होना चाहिए। तो ख्याल रखें इस बात का कि वो कहीं से भी खाना जो है वो खा सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। वला अला अनफुसिकुम, और ना ही तुम्हारे अपने ऊपर कोई मजायका है। अब देखें कि पहले तो जो अंधा लंगड़ा और मरीज है ना, उसको तो कह दिया कि वो कहीं से भी खाना खा सकते हैं ना। अब इसके साथ ही कहा कि तुम्हारे ऊपर भी कोई हर्ज नहीं है कि तुम खाना खा लिया करो। कहां से? मिम बयूतेकुम, नंबर एक, अपने घरों से। अब इस बात की जरूरत जो है वो क्यों पेश आई कि ये कहा जाए कि तुम अपने घरों से खाना खा लो? है ऐसी कौन सी बेगानगी पैदा हो गई कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में ये आयतें नाजिल कर दी कि अपने घरों से खाना जो है वो तुम खाओ, तो इसमें जो है वो कोई हर्ज नहीं है। इसकी क्या वजह है ना? सोचने की बात है कि इसकी क्या वजह है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम अपने घरों से खाना जो है वो खाओ, तो इसमें जो है वो कोई हर्ज नहीं है। तो दरअसल जो बात है वो क्या है कि वला अला अनफुसिकुम अन ताकुलू मिन बुयूतिकुम, के बाजू का जो है वो ऐसा होता है कि इंसान जो है वो अपने घर के अंदर भी बेगाना होता है ना, अपने घर के अंदर भी। जैसे मसलन अब एक घर के अंदर जो है वो बहू सास इकट्ठी रह रही है, ठीक है। अब आप देखें कि जब कभी सास का राज था तो बहू के साथ उसने क्या सलूक किया कि चीज पड़ी हुई खराब हो जाए लेकिन वो बहू को नहीं देनी, है ना। हो के हो सकता है अब हालात ऐसे ना हो, लेकिन कभी ऐसा भी होता है बाज घरों में। और इसी तरह जो है वो आजकल, यानी जैसे अगर सासे बूढ़ी हो चुकी हैं, तो बहुत से घरों में ऐसा होता है कि जो बूढ़ी बुजुर्ग औरतें हैं, सास हैं, तो जैसे एक दफा एक बूढ़ी सास मुझे कहने लगी कि मेरा जो बेटा है वो बड़ी खिदमत करता है, बाहर से ग्रोसरी भी, फ्रूट भी, चीजें भी, केक। उसको पता था कि मेरी माँ को केक पसंद है, मेरी माँ को बिस्किट पसंद है, कुकीज पसंद है, तो मेरा बेटा खरीद कर लाता है और फिर कहता है कि मेरी माँ को ये चीजें दें। उसके बाद वो कहती थी पता नहीं चलता चीजें कहाँ गायब हो जाती हैं और मुझे नहीं मिलती ना। तो ये ठीक है कि खुद भी खा ले, बहू खुद खा ले, बच्चे भी खा ले, लेकिन उस बूढ़ी औरत को जो है उसको भी जो है उसको कुकीज जो है वो देनी चाहिए ना, है ना। कुकीज, फ्रूट, जो भी जो है वो चीज खाने की जो है, तो उसमें क्या है कि यानी अपने घर में किसी को बेगाना नहीं होना चाहिए। तो अंताकुलू मिन बुयूतिकुम, कि तुम अपने घरों से जो है वो खा सकते हो, तो इस पर ना कोई पाबंदियां नहीं होनी चाहिए कि कोई जो है वो खा ना सकता हो अगर एक घर में मुख्तलिफ लोग मिलजुल कर रह रहे हैं। फिर दूसरी चीज क्या है, औ बुयूते आबाएकुम, या फिर अपने बाप दादों के घरों से। बाप दादा जो है तो आबा का लफ्ज इस्तेमाल किया गया जिसमें बाप दादा जो भी, जैसे दादा का घर है, जो भी बुजुर्गों का घर है, तो उन घरों से भी जो है वो खाया जा सकता है। तो आप देखें कि आबाइकुम जमा का सीगा जो है वो इस्तेमाल किया गया है, और इससे मुराद क्या है कि अपने जो भी बाप दादा का घर है उसे खाने में भी कोई मजायका नहीं है। फिर क्या कहा, नंबर तीन, के ओ बयूते उम्महातिकुम, या अपनी माओ के घरों से। अब यहाँ पे भी उम नहीं कहा क्योंकि माँ का घर तो एक ही होता है, तो क्या कहा, माओ के घरों से। तो फिर इससे कौन लोग मुराद है, जैसी माँ है, नानी है, तो उनके घरों से भी आप जो है वो खा सकते हैं। जैसे माँ का घर है, नानी का घर है, या दादी का घर है, जो भी बुजुर्ग औरतें हैं, रिश्तेदार है, उनसे खा सकते हैं। ओ बयूते इखवानेकुम, नंबर चार, या फिर अपने भाइयों के घरों से। अब आप देख लें कि जब भाइयों का यहाँ पे जिक्र किया है तो ये नहीं कहा कि एक भाई के घर से, बल्कि क्या कहा कि भाइयों के घरों से जो है तुम खाओ, तो इसमें जो है वो कोई हर्ज नहीं है। और यहाँ पे फिर भाइयों से कौन से भाई जो है वो मुराद है, जो है वो सगे भाई भी और सुतेले भाई भी, यानी सगे भाई हैं, सुतेले भाई हैं, माँ की तरफ से हैं या फिर बाप की तरफ से हैं, दूध शरीक हैं, जो भी भाई हैं उनके घरों से जो है वो आप खा सकते हैं। फिर आप देखें कि आप ये बात भी आप सूरत निसा में पढ़ी चुकी कि अख्याफी भाई हैं या फिर अल्लाती भाई हैं, तो ये सब इसके अंदर जो है वो आ जाता है। तो और भाई एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, है ना, एक भाई नहीं, सब भाइयों के घरों से। अब ये नहीं हो सकता कि बेटियां शादी होके चली जाएं अपने घरों में और जब वो भाइयों के घर जाएं तो खाना भी ना खा सकें, यानी इतनी बेगानगी हो जाए या ऐसे हालात हो जाएं कि अब भाभी पूछ रही हैं तो आप खा सकते हैं वरना खा ही नहीं सकते ना। तो ये आपका अपना घर है, आपके भाई का घर है, तो आप उससे जो है वो खा सकते हैं। आप देखें इस्लाम कितनी मोहब्बत की फिजा जो है उसको परवान चढ़ाना चाहता है। तो वही बहनें जहाँ पे बहन भाई कभी इकट्ठे रहते थे एक घर में जो है वो, तब क्या फिजा होती थी, और वही घर जो है उसमें एक औरत के आने से क्या इतनी तब्दीली होगी कि वो खा ही नहीं सके। तो भाइयों का घर है, भाइयों के घरों से जो है वो बेटियां या बहनें खा सकती हैं या भाई भाई के घर से खा सकता है, जो भी मतलब इस तरह करीबी रिश्तेदार है जिनके वो भाई हैं उनके घरों से खाया जा सकता है। नंबर 5, ओ बयूते अखवातेकुम, या अपनी बहनों के घरों से। अब आप देखें कि बहनों के घरों का जो है उनका भी जिक्र किया जा रहा है कि बहनों के घरों से भी जो है वो खाया जा सकता है। तो हमारे यहाँ भी सोसाइटी में ये चीज मायूब समझी जाती है कि कोई भाई जो है ना वो बहन के घर से खाए, पसंद नहीं जो है वो किया जाता। और एक बहन का जिक्र नहीं हो रहा यहाँ पे, जो भी बहनें हैं हर तरह की सगी हैं, सुतेली हैं, माँ की तरफ से हैं, बाप की तरफ से हैं, तो बहनों के घरों से जो है वो खाया जा सकता है। ये जितनी भी ये जो आयत है इसे हकूकुल इबाद जो है ना उसकी अहमियत का अंदाजा हो रहा है। अल्लाह ताला दूसरों के हकूक जो हैं उसकी हिफाजत कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कोई मुसलमान जो है वो किसी अपने करीबी जो दूसरा मुसलमान है उसके घर से खा सकता है। तो ये अल्लाह ताला ने ये बातों को वाजे कर दिया ताकि अमली जिंदगी में लोगों के अंदर जो है वो कमी पैदा ना हो जाए। और पहली ये था कि अरब सोसाइटी जो थी वो बड़ी जाहिल थी, तो दूसरी एक्सट्रीम थी जब कुरान की आयात नाजिल हुई तो लोग और ज्यादा जो थे वो डरने लगे। औ बयूती अखवातेकुम, या फिर अपनी बहनों के घरों से जो है वो खा सकते हो। तो बहन एक हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, सगी और सुतेली, तो सबके घरों से जो है वो खाया जा सकता है। और मतलब ये रस्म भी सही नहीं है कि जैसे बहनों के घरों से लोग पानी पीना, खाना खाना या इस तरह से कोई दावत वगैरह जो उसको पसंद नहीं करते। तो अब बहरहाल गो के हालात पहले से काफी बदल चुके हैं, लेकिन फिर भी जो है उनके घरों से जो है वो खाया जा सकता है। फिर इसके बाद जो है वो छठा बताया कि औ बयूती अमामेकुम, ये अपने चचाओं के घरों से, तो चचा के घर से भी जो है वो खाया जा सकता है और उसमें जो है वो कोई तकल्लुफ की बात जो है वो नहीं है। तो जो भी चचा हैं उनके घरों से खाने में, औ बयूते अमामेकुम यानी अपने चचाओं के घरों से, एक चचा है या ज्यादा तो उनके घरों से भी खाया जा सकता है। औ बयूती अम्मातेकुम, या अपनी फुफियों के घरों से, नंबर 7 है ना, तो जो फुफी है उसके घर से भी खाएं तो ऐसी कोई तकल्लुफ की बात नहीं है, बिला तकल्लुफ उनके घर से आप खा सकते हैं। औ बयूती अखवालेकुम, या अपने मामुओं के घरों से, अखवालेकुम खाल खालू जो है उसके लिए भी आता है और मामू के लिए भी आता है, यानी मामुओं के घरों से भी आप जो है वो खा सकते हैं। औ बयूती खालातेकुम, या अपनी खालाओं के घरों से, खाला तो उनके घर से जो है वो खाना जो है उसकी भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है वो इजाजत दी है। ये नंबर 9 है। और आप देख लें कि ये जितने भी रिश्तेदार हैं अल्लाह ताला ने एक एक करके इनके बारे में गिनवाया कि आप इनके घर से जो है वो खा सकते हैं, कोई तकल्लुफ, कोई तंगी, कोई तकलीफ की बात नहीं है, कोई हर्ज नहीं है कि आप इनके घर जाएं। तो मसलन आप इनके घर जाते हैं और फ्रिज में खाना पड़ा हुआ है तो आप फ्रिज से निकाल कर खा सकते हैं, फ्रूट पड़ा हुआ है तो उसमें से जो है वो खा सकते हैं, तो घर वालों को जो है इसमें तंगी महसूस आपस में नहीं करनी चाहिए। और लेकिन जो खास बात जिसका ख्याल रखने की जरूरत है कि जब आप किसी के घर से जो खाएं तो ये आम किस्म का खाना मुराद है ना, जिसके खा जाने में घर वालों को कोई तंगी महसूस जो है वो नहीं होती। बाज़ुकात ऐसा भी होता है, मुफस्सरीन ने इसकी जो तफसीर की वो ये कहते हैं कि बाज़ुकात घर वालों ने कुछ खास किस्म का खाना, यानी वो खसूसी खाना हो सकता है, आम नहीं खास खाना है, उसको उन्होंने अलग रखा हुआ है, खाने पीने की चीजें हैं उसको उन्होंने अलग करके रखा हुआ है, छुपा के रखा है या अलग करके रखा है। तो अब इसका ये नहीं मतलब कि आप जब खाने लगे तो वो जो जखीरा शुदा चीजें हैं या जो उन्होंने अलग करके रखी हैं तो आप उनको भी अपने इस्तेमाल में जो है वो ले आए, है ना। तो इससे क्या बात पता चलती है, जैसे मसलन हम ग्रोसरी करते हैं, आप लोग घरों में ग्रोसरी करते हैं तो आप महीने भर की ग्रोसरी आपने करके रखी, आपने खाने पीने की चीजें महीने भर की रखी। अब बाहर से जो भी इस तरह आ रहे हैं रिश्तेदार या दोस्त अहबाब, तो अब ये नहीं है कि वो जो हफ्ते भर की वो एक दिन में खत्म कर दे या महीने भर की वो दो चार दिन में खत्म कर दे, तो घर वालों की जो जरूरत है ना उसका भी ख्याल रखने की जरूरत है। बाज़ घरों में पढ़ाई, जॉब, बीमारी, तंगी, तकलीफ किसी भी वजह से हो सकता है, हफ्ते भर का खाना फ्रिज में पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो अब जो है आप खाला के घर गए हैं, फुफो के घर गए हैं, या ये जो भी करीबी बुजुर्ग दादी नानी है तो अम्मी है उसके घर आए हैं, तो अब वो खुद तो बेचारी काम भी नहीं कर सकती, अगर कर भी सकती हैं तो उन्होंने जैसे हफ्ते भर की उनकी कोई रूटीन है, जैसे आप में से जो है कोई तालिब इल्म है वो पढ़ रहा है तो आप अपनी एक सेटिंग करके रखते हैं कि चलो ये चीज मैं दोपहर में इस्तेमाल कर लूंगी और ये चीज मैं रात में कर लूंगी। तो अब आप भी जब तक बेतकल्फी में जाएं तो आप ये ना हो कि उनका हफ्ते भर का सारा कुछ खत्म कर दें, चट कर दें, तो आप कह अरे ये डिब्बा भी पड़ा हुआ है, अरे वो चीज भी लेकर आए और वो चटनी भी पड़ी हुई और वो जो है वो सलाद भी जो है वो हो। तो मतलब ख्याल रखना भी जरूरी है कि ऐसा ना हो कि घर वालों को जो है वो तंगी जो है वो पैदा हो। फिर नंबर 10 क्या कहा, औ मा मलक तुम मफातेहा हूँ, या फिर मालिक हुए जिनकी तुम चाबियों के। इससे क्या मुराद है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहाँ पे ऐलान कर दिया कि औ मा मलक तुम, या फिर तुम मालिक हुए मफातेहा हूँ जिन घरों की चाबियों के, जिन घरों की कुंजियों के। तो इस सिलसिले में जो है वो सईद बिन मुसैयब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब मुसलमान किसी जिहाद या गजवा के लिए जाते तो अपने घरों की चाबियां माजूरों के सुपुर्द करते और उनसे ये कह देते थे, माजूरों के क्यों सुपुर्द करते थे, कोई भी सेहतमंद और तंदुरुस्त ऐसा होता ही नहीं था कि वो जो है वो जिहाद पर ना जाता हो, सारे अल्लाह के रास्ते की जब पुकारा जाता था नफीरे आम होती थी सब चले जाते थे, अब माजूर बाकी बचते थे। तो चाबियां जब उनको देते तो ये कह देते थे कि घरों में जो कुछ है तुम लोग खा पी सकते हो, मगर वो लोग क्या करते थे, एहतियात करते थे और कुछ नहीं खाते थे ताकि ऐसा ना हो कि उनकी मर्जी के खिलाफ कोई चीज जो है वो इस्तेमाल हो जाए। कहते हैं इसलिए ये आयत नाजिल हुई, और एहतियात इतनी वो लोग क्यों करते थे, इसलिए कहते हैं कि जब ये आयतें इस तरह की नाजिल हुई कि लता कुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, कि दूसरों के माल नजायज तरीकों से ना खाओ, तो लोग एक दूसरे के यहाँ खाना खाने में सख्त एहतियात करने लगे, बिल्कुल कानूनी शर्त के मुताबिक, अगर घर वाले दावत देते, इजाजत देते, कहते तो खाते, वरना फिर किसी रिश्तेदार या दोस्त के घर खाने को नजायज समझने लगे, है ना। तो ये बात जो है वो बहुत अहम है। और इस सिलसिले में एक बात और भी जो है वो पता चलती है कि उस जमाने में चंद वाकयात हुए थे जिस वजह से कहते हैं कि ये आयत जो है वो नाजिल हो गई, कि मसलन जैसे लंगड़े, लूले, अंधे, बीमार आदमी के साथ जो थे वो आम लोग खाना खाने में घिन महसूस करते थे या ना पसंद करते थे, क्योंकि लंगड़ा क्या करता है, वो दो लोगों की जगह लेता है, जब वो बैठेगा वो अपनी टांग को फैला के बैठेगा, आहिस्ता आहिस्ता आएगा, है ना, तो उसको अब आप खाने के दस्तरखान पे या आप टेबल पे गए, आप शादी के किसी दावत पर गए, किसी रेस्टोरेंट में हैं, किसी बड़े हॉल में बैठ गए हैं खाना लेने। अब अगर कोई मजदूर है, व्हीलचेयर वाला है, अंधा है, अब उसको तो समझ नहीं आएगी मैं लूं कैसे, वो देर लगाएगा। तो लोगों की तबीयत जो है ना उस पर ये चीज गिरा गुजरती है ना। तो अब जो है इसलिए अल्लाह ताला ने ये जो सोच थी इसकी इस्लाह करनी जो है वो जरूरी समझी कि लोगों के दिल तंग ना हो और अंधे लंगड़े माजूर बीमार भी कोई तंगी और तकलीफ महसूस ना करें, ताकि मिलजुल कर लोग जो हैं वो खाना खाएं। और ऐसी कोई बात नहीं है, है ना। तो ये बात है। और फिर साथ ही ये जो जिनके माल मालिक हुए तुम उनकी चाबियों के, तो ऐसे भी बाज़ूकात होता था कि गरीब जो माजूर होते थे उनके सुपुर्द चाबियां सहाबा करते थे और कहते थे तुम खा सकते हो, लेकिन उनका तकवा ये होता था कि वो खाते ही नहीं थे, वो मौजूद नहीं होते थे और वो भूखे रहते। तो इसलिए भी ये आयतें जो थी वो नाजिल हुई। और ये जिनकी चाबियां तुम सुपुर्द कर दो, बाज़ू का ऐसा भी होता है आप जैसे किसी कंट्री छुट्टी चले जाते हैं, पीछे से आपने किसी को चाबी दी है, वो आकर मेल चेक कर रहा है, वो आपके घर की सफाई कर रहा है, वो आपके घर की देखभाल कर रहा है, और कब आया घर में और वो फिर जो है वो उसमें से कोई चीज खाने की, कोई कुकी कोई भी ऐसी चीज वो मुंह में डाल ले, तो इसमें कोई हर्ज नहीं अगर खाने की चीज जो है वो पड़ी हुई है। ये भी इससे मुराद है। फिर इससे मुराद जो है मुफस्सरीन ये कहते हैं कि नौकर चाकर भी हैं। मसलन अब नौकर है, सारा वक्त वो खाना पका रहा है, तो अगर वो खाना पका रहा है तो अगर वो साथ ही खा भी ले तो इसमें कोई हर्ज नहीं कि वो मुस्तकिल पका रहा है, खाता है, चखता है। इसी तरह कोई माली है, वो माली क्या करता है कि वो बाग की देखभाल कर रहा है, उसमें से फल गिर रहे हैं, टूट रहे हैं, वो तोड़ रहा है, तो अगर वो फल खा ले तो इसमें कोई हर्ज नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन इसके साथ ही जो है मुफस्सरीन क्या कहते हैं, अब ये नहीं हो सकता कि बाग का माली भी वो भर भर के टोकरे फिर घर ले जाए। ये भी नहीं कर सकता कि वो जो है किसी के गैर मौजूदगी में उसके घर से आप चीजें उठाकर अपने घर ले जाना चाहें। तो ख्याल रखना है दोनों चीजों का, कोई फ्रूट कोई ड्राई फ्रूट कोई भी चीज जो है वो अगर आपको नजर आ रही है तो खाने में तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये है कि इसलिए कि उनकी चाबी आपके पास है, आप उसके मुहाफिज हैं, आप उसके वकील हैं, लेकिन खाएं पिए तो मारूफ तरीके के मुताबिक, यानी हद से जो है वो आप ना गुजरे। अच्छा आप देखें नंबर 11, फिर और सदीकेकुम, दोस्तों का भी जिक्र कर दिया, यानी अपने दोस्तों के घरों से भी तुम जो है वो खा सकते हो। तो दोस्तों से मुराद हर तरह के लोग नहीं है, बल्कि वो दोस्त जो बेतकल्लुफ है, जो जिगरी दोस्त हैं। तो अगर घर वाले मौजूद नहीं है तो उनकी गैर मौजूदगी में दोस्त आकर हलवा उड़ा जाएं, तो उनको कोई नागवारी इस बात पर जो है वो महसूस जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो इससे इन सारी बातों से फिर हमें क्या बात पता चलती है कि मसलन आप देखें कि बाज़ुकात दोस्त जो हैं वो घर में आते हैं और बेतकल्लुफ खाने का टाइम है, वो आपने दावत नहीं भी दी हुई तो खाना खाया जा सकता है। लेकिन आप देखें कि बाज़ुकात दावत पे भी आप जाएं, कहीं भी जाएं, तो खाना होता है। अब जो बेतकल्लुफ किस्म के दोस्त होते हैं तो बाज़ुकात वो मारूफ से आगे बढ़ जाते हैं। कैसे आगे बढ़ जाते हैं? वो ये कहते हैं कि जो है मुतालबात ज्यादा करते हैं कि फलां चीज भी जो है वो तुमने बनाई भी है, वो रखी हुई है, या उनको नजर आ गई, या उनको खुशबू आ गई, या उनको पता चल गया। हो सकता है उन्होंने किसी वजह से बनाई भी हो सकता है उन्होंने किसी को भेजनी हो सकता है उनके घर में कोई बीमार हो, उनके बाद चीजों की खुशबू बहुत होती है, तो या वैसे पता होता है। तो ऐसा ना हो कि वो तंग करें आप घर वालों को, या फिर ये होता है कि खुद खाने के बाद दूसरी बात क्या होती है, अभी घर वालों ने खाया भी नहीं होता तो कहते हैं कि ये मेरे शोहर को ना मिठाई बड़ी पसंद है, और कड़ी कड़ी तो आप गजब की बनाती हैं, साथ ही ना वो डालना शुरू कर देते हैं, और बिरयानी मेरे से तो पकती ही नहीं है, मेरे से तो बिरयानी का चावल दम ही नहीं आता, साथ ही कहते हैं एक डिश बिरयानी की भी दे दे, है ना। या फिर ये है कि वो निहारी निहारी जो है ना ये बड़ी जबरदस्त है, या फिर पुलाव या फिर रस मलाई, जो भी खाना पका हुआ होता है ना पहले खाते हैं, फिर उसके साथ ही कहते हैं कि मुतालबा करते हैं कि आप हमें इसमें डाल के दे। और बाज़ का तभी पूरे मेहमान फारिग नहीं हुए हुए होते, घर वाले भी उन्होंने खाना नहीं खाया हुआ होता। हो सकता है माँ औरत और मर्द जो मेहमान हैं मेजबान हैं उन्होंने खाना भी ना खाया हो ना, लेकिन अब वो बोलते नहीं है, लेकिन दिल पे गिरां गुजरती है। अच्छा ये भी हो सकता है कि आप ही हर दफा मुतालबा करते हो, आपको इतनी आदत है या मुझे इतनी आदत है कि मैं मुतालबा करूं। हो सकता है उन्होंने किसी और हमसाये के घर भेजना हो, है तो सही खाना, उन्होंने किसी दोस्त के घर भेजना हो, कोई और बीमार है, कोई जरूरतमंद है, किसी की फैमिली गई हुई है पीछे, कोई अकेले लोग यहाँ रह रहे हैं, तो हो सकता है उन्होंने जो ज्यादा पकाया है उसकी कोई रीजन हो, कोई वजह हो। तो मुंह बहुत नहीं खोलना चाहिए, किसी को तंग नहीं करना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि जब दोस्तों के घरों में जाएं तो आपका जाना ही उनकी तंगी का जो है वो बायस बन जाए। और बाज लोग तो यानी किसी के घर में कोई बीमार है, कोई मजदूर है, कोई वो मसरूफ है, हो सकता है आपका कोई दोस्त मसरूफ ही बहुत रहता हो, है ना, तालब इल्म है, पढ़ाई कर रहा है कॉलेज स्कूल में या कुरान की क्लास में, या वो उस्ताद है और उनको अच्छा खाना पकाना आता है, तो आप फिर या मैं या और आप ऐसे मुतालबात करें। और ये जबान जो है ना, ये तो कहीं इसका कोई जो है ये लज्जतों का और खानों का कोई एंड नहीं है, और हम बहुत हो सकता है कि दूसरों को जो है वो तंग करें। तो ये बातें क्या है, औ सदीकिकुम या फिर अपने दोस्तों के घरों से, तो ये 11 चीजें गिनवा कर अल्लाह ताला कहते हैं लैसा अलैकुम जुनाहुन, यानी 11 लोगों के बारे में उनका जिक्र करके कि तुम पर कोई गुनाह नहीं है, कोई हरज नहीं है, यानी इस चीज में कोई तंगी नहीं महसूस करनी चाहिए ना खाने वाले को ना जिसके घर से खाया जाए, लेकिन मारूफ मारूफ का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। जब हम बाज़ का दूसरों से मुतालबात कर रहे होते हैं, आप अपने आप को भी तो उस जगह रखकर देखा करें ना कि आपके पास अगर वक्त नहीं है तो उसके पास कहां से वक्त है, अगर आप इतना ज्यादा नहीं पका सकती वो कहां से पका सकता है ना। आप किसी के घर से जब बहुत ज्यादा साथ लेके भी हम जाना चाहते हैं, तो अगर मेरे घर से कोई ले जाए और मेरे घर में ऐसे हालात हैं कि हो सकता है आप या मैं ये चाहते हो कि ये कल मेरे काम आएगा, या आज सारा दिन इसमें गुजरा है, कल आपकी कोई अपॉइंटमेंट है, तो क्या है कि असल बात क्या है, एक दूसरे का ख्याल रखना। तो इस्लाम जो है वो क्या बताता है कि तीन बातों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, जिसमें से पहली चीज जो है वो क्या है कि जो भी माजूर है ना वो अपनी भूख को दूर कर सकते हैं, हर घर से हर जगह से वो अपनी भूख दूर कर सकते हैं। क्यों? उनकी माजूरी की वजह से पूरे माशरे पर उनका हक कायम हो गया, इसलिए जहां से भी उनको खाने को मिल जाए तो वो उनके लिए जायज है, वो पका नहीं सकते, वो खुद उनके लिए मसाइल हैं। तो नंबर वन तो ये बात है। दूसरी बात जो है कि जब आप किसी के घर से खाना खाएं तो बाज़ औक़ात, जब चूंकि इस्लाम जब आया तो हलाल हराम की जो है वो तमीज पैदा की गई, हलाल हराम के अहकामात जब नाजिल हुए तो इस सिलसिले में भी बाज़ लोगों के हिस बड़ी नाजुक थी, इखलाकी हिस। तो वो क्या करते थे, किसी के घर जाते थे, देखते थे पता नहीं इनके घर हलाल है कि हराम है ना। तो दो के इसका ख्याल रखना जरूरी तो है कि इसमें एहतियात जो है वो की जाए। और बाज़ वक़्त ऐसा भी होता था कि जैसे सदका खैरात या ज़कात, बाज़ लोगों को पता होता था कि इनको हमने दी है और ये गरीब लोग हैं, तो अब जब वो गरीब लोग दावत करते या कोई मेहमान वो लोग जो उनके घर आते तो उनको कोई खाने को पेश करते या वो उनके घर कुछ भेजते तो कहते कि ये तो सदका खैरात है, ये कैसे खाएं हम, पता नहीं हमें लगेगा कि नहीं, है ना। तो एक बात आप याद रखें, जैसे हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से एक दफा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि कुछ खाने को है, तो उन्होंने कहा कि कुछ भी खाने को नहीं है सिवाय उसके कि वो जो कोई उनकी लौंडी या कनीज थी कि उन बरीरा के घर से जो कुछ आया है ना उसके अलावा खाने को कुछ नहीं है, मतलब जो सदका उनके पास आया। तो आपने कहा कि उसके लिए तो वो सदका है, हमारे लिए वो हदिया है, तो उसको खाया जा सकता है। इससे क्या बात पता चली कि अगर पता भी है कि उनके पास वो ज़कात या कोई सदका का चीज उन्होंने पेश की है तो खाई जा, उनके लिए वो सदका है ज़कात है, लेकिन मेहमान जो अगर कोई गया है तो उनके लिए वो क्या है कि वो एक हदिया है, वो तोहफा है, तो उसमें जो है वो खाया जा सकता है। तो ये दूसरी अहम बात क्या पता चली कि अपने यानी दोस्त रिश्तेदारों के घर जाएं और अगर वो कोई चीज पेश करें तो कोई ज्यादा इसमें जो है वो कानूनी जो कवायद और जवाबित हैं उसको वहां बैठ के पूरा ना करने लग जाएं, बल्कि बैठकर आराम से वहां पे जो है वो खाया जा सकता है। और تیسری بات جو بہت اہم ہے اور وہ کیا ہے کہ جب وہاں سے کھائیں تو معروف طریقے کے مطابق کھائیں, یعنی اس میں تنگی نہ کی جائے. وہ اگر بھوک ہے تو کسی بھی چیز سے اپنے یہ جو رشتہ دار جو دوست احباب ہے ان کے گھر سے بھوک جو ہے اس کو مٹایا جا سکتا ہے. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جب وہ پردے کے احکامات نازل ہوئے نا, تو اگر کوئی وہ صحابہ کسی کے گھر جاتے تو صاحب گھر نہ ہوتے, پیچھے سے بیوی بچے کو چیز پیش کرتے تو وہ نہیں کھاتے تھے, احتیاط کرتے تھے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر گھر والے کچھ بھی چیز جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں تو آپ اس کو کھا سکتے ہیں, ایسی خام خواہ کوئی وہم کوئی وسوسہ اپنے دل کے اندر جو ہے وہ پیدا نہ کریں. تو یہ تو تھی بات اہم. اور دوسری بات جو کہی کہ لیسا علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا, کہ اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, اس میں کوئی تکلیف نہیں ہے کہ تم مل کر کھاؤ یا الگ الگ. اچھا, یہ آیت کا حصہ کیوں نازل ہوا؟ کہتے ہیں پرانے زمانے میں اہل عرب کے بعض قبیلوں کی یہ عادت تھی کہ ہر ایک الگ الگ کھانا لے کر کھائے, الگ الگ لے کر وہ اپنا کھانا بیٹھتے تھے اور مل کر ایک جگہ کھانا کھانے کو برا سمجھتے تھے, جیسا کہ ہندوؤں کے ہاں آج بھی برا سمجھا جاتا ہے مل کر کھانا کھانا, ہے نا. اور بعض قبیلے ایسے تھے جو تنہا کھانا کھانے کو برا سمجھتے تھے, فاقہ کر جاتے تھے اور اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کہ ان کے ساتھ کوئی کھانا کھانے کے لیے ملتا نہیں تھا. تو انتظار کرتے تھے کہ کوئی کھانا کھانے کے لیے ملے تو پھر جو ہے ہم کھانا کھائیں گے. تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو غیر ضروری پابندی تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا. غیر ضروری پابندی کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی روح سے عام اجازت دے دی کہ جس طرح چاہیں آپ کھا سکتے ہیں, اور اس طرح یعنی اکیلے اکیلے بھی یا پھر مل کر بھی, ہے نا. تو اس میں کھانے میں جو ہے وہ کوئی حرج نہیں. تو جو لوگ مل کر نہیں کھانا چاہتے تھے اس کی وجہ کیا تھی؟ ان کو یہ لگتا تھا کہ پتہ ہی نہیں چلتا کس نے کم کھایا کس نے زیادہ کھایا, ہے نا. تو اصل چیز کیا ہے کہ دوسروں کی مرضی کا اندازہ کرنا چاہیے کہ جو بھی لوگ ہیں وہ کیا پسند کرتے ہیں. تو اب آپس کی جب بھی میل ملاقات ہوتی ہے تو کھانا پینا تو خود ہی آ ہی جاتا ہے بیچ میں نا. جہاں بھی آپ اکٹھے ہوں گے سوسائٹی میں معاشرے میں, تو ایسے اوقات ہوتے ہیں, ایسی محفلیں ہوتی ہیں, ایسی نشست اور برخاست ہوتی ہے جہاں مل کر کھانے کا موقع پیدا ہو جاتا ہے. تو پھر ایسے میں جو ہے کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ مل کر کھائیں. اور اسلام تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اکٹھے کھایا جائے, اس کو ترجیح دیتا ہے. جیسے جو ہے وہ پتہ چلتا ہے اس حدیث سے بھی کہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے جو تھے وہ ایک بیٹے تھے جو ابو سلمہ سے تھے. وہ کہتے ہیں وہ بیٹے کیا کہتے ہیں, عمر بن ابی سلمہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھایا, میں پلیٹ کے سب اطراف میں ہاتھ بڑھانے لگا دائیں بائیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے سامنے سے کھاؤ. اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اشعری لوگ جب لڑائی میں محتاج ہو جاتے ہیں یا مدینہ میں ان کے بال بچوں کا کھانا کم ہو جاتا ہے تو جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے اس کو ایک کپڑے میں اکٹھا کرتے ہیں, پھر آپس میں برابر برابر بانٹ لیتے ہیں, یہ لوگ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں, ہے نا. تو اس سے جو ہے وہ کیا بات پتہ چلتی ہے کہ جب بھی آپ کھانا کھائیں تو مل کر بھی کھا سکتے ہیں اور الگ ہو کر بھی کھانا جو ہے وہ کھا سکتے ہیں. اور اس اور ایک اور اہم بات کہ جب آپ مل کر کھائیں کھانا تو ضروری ہے کہ آپ دوسروں کا خیال رکھیں, کیونکہ مل کر کھانے میں دوسروں کے حق کا خیال رکھنا, کہ یہی نہیں کہ ساری بوٹیاں اپنی پلیٹ میں ڈالنی, یا یہی نہیں کہ جیسے اگر فروٹ کی بھی پلیٹ ہے یا کوئی سویٹ ڈش رکھی گئی ہے تو اوپر بہت اچھی ڈیکوریشن ہے یا نیچے اندر تہہ میں بڑی اچھی ڈیکوریشن ہے, تو آپ جو باقی چیز ہے اس کو ہم الگ کر دیں اور نیچے کا ساری چیز نکال لیں یا اوپر کا سارا ہم لے لینا. تو مل کر کھائیں یا الگ الگ کھائیں, آپس میں موقع کی مناسبت سے ہم طے کر سکتے ہیں. اور جیسے گھر کے اندر بھی کوئی ایسا وقت ہونا چاہیے جب پوری فیملی اکٹھا مل کر جو ہے وہ کھانا کھائے, محبت پیار کی جو ہے اس میں فضا پیدا ہوتی ہے, اس طرح دوست بھی, لیکن دوسروں کا خیال رکھتے ہوئے. کسی بھی چیز میں ایکسٹریم پر جانا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. اچھا, اب جو ہے یہاں تک آیت میں یہ بتایا کہ ہم کھا سکتے ہیں ان سب گھروں سے بھی, और जो मजदूर लोग हैं वो भी हमारे साथ खा सकते हैं, हम उनके साथ खा सकते हैं, उनको छूत बनाकर नहीं रख देना चाहिए, है ना, अलग खा सकते हैं, मिलकर खा सकते हैं। तो जहां तक बात है खाना खाने की, इसमें कोई हर्ज नहीं है, इसमें बरकत है कि हम मिलजुल कर आपस में खाएं। लेकिन फिर असल बात क्या है? असल बात यह है कि जब भी हम इकट्ठे होंगे, है ना, जब भी हम अपने घर में या किसी के घर में या किसी जगह भी हम इकट्ठे होंगे, तो करना क्या चाहिए? फाइजा दखल तुम बयूतन फसल्लमू अला अनफुसिकुम, तो जब घरों में दाखिल हुआ करो तो अपने लोगों को सलाम किया करो, फसल्लमू अला अनफुसिकुम, तो अपने लोगों को सलाम किया करो, तहियतन मिन इंदिल्लाही, ये अल्लाह की तरफ से जो है ना एक तोहफा है। और ये तोहफा कैसा है? मुबारकतन तय्यबा, बड़ी बाबरकत और ये पाकीजा जो है वो दुआ है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है वो ये हुक्म दिया कि तुम अपने घर में हो, किसी दूसरे के घर में हो, जब भी आप लोग इकट्ठे हों तो वहां मौजूद लोगों पर सलामती की दुआ कहा करें, है ना, जरूर सलामती की दुआ जो है वो कहनी चाहिए। और अब आप देखें कि सलाम जो है इसका अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया है तो बार बार दिया है कि आपस में मेल मुलाकात में सलाम से बेहतर दुआ और कोई नहीं है। आखिर हम सलाम जो है वो क्यों करें और अल्लाह ताला ने इसकी तकरार इतनी क्यों की? पीछे भी आपने सूरत नूर में पढ़ा कि जब आप किसी के घर जाएं तो एक तो इजाजत लेना और दूसरा जो है वो सलाम करना। अब फिर यहां पे कहा फाइजा, पस जब, यानी अलबत्ता अहम बात क्या है कि फाइजा दखल तुम बुयूतन, जब घरों में दाखिल हो, ये जितने घर हैं, अपना घर है या दूसरों का घर है, जितने भी घर हैं, जब भी तुम घरों में दाखिल हुआ करो, फसल्लमू अला अनफुसिकुम, तो अपने ऊपर सलाम कर लिया करो, अनफुसिकुम का लफ्ज आया है, तो अपने लोगों को सलाम कर लिया करो। तो गोया के अपने जितने रिश्तेदार हैं इनको सलाम करोगे, तुमने अपने आप को सलाम किया, है ना, क्या बात पता चली? फसल्लमू अला अनफुसिकुम, तो आप इन सब लोगों को जो है वो सलाम किया करो, और सलाम जो है ये जब भी तुम किसी से मिलो तो सलाम करना जो है ये तुम्हारा बेहतरीन तोहफा जो है वो होना चाहिए। और अब हमें इस बात पर गौर करना चाहिए कि जब हम मिलते हैं तो अब कसीर लोग ऐसे भी होने लगे कि वो सलाम करते ही नहीं है, हत्ता के घर बाद घर के जो सरपरस्त और सरबराह हैं वो घर में दाखिल होते हैं ना, बस सलाम ही नहीं करते। ये भी तकब्बुर की एक अलामत है कि मुझे दूसरे सलाम करे, खुद वो सलाम नहीं करते, है ना। और दूसरी बात ये भी हो सकती है कि शऊर ही नहीं है, समझ ही नहीं है कि सलाम करना करूं मैं, तो सलाम क्यों करें? इसलिए सलाम करना जरूरी है, इसका हुक्म किसने दिया? तहियतम मिन इंदिल्लाह, ये तो अल्लाह के नजदीक तोहफा है, अल्लाह ने मुकर्रर किया है कि सलाम जो है हम आपस में जब मिले तो हमें एक दूसरे को जो है वो सलाम करना चाहिए, है ना, कि घर में दाखिल होने का ये अदब जो है वो इस्लाम ने बताया है। और इस सिलसिले में हमें अहदीस भी मिलती हैं, जैसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक आदमी ने पूछा अय्युल इस्लाम खैर, इस्लाम का कौन सा काम बेहतर है, बेहतरीन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुत्इमुत्तामा, खाना खिलाना, यानी जो भी गरीब मिस्कीन है उनको खाना खिलाना, व तुकरे उस सलामा, और सलाम करना, अला मन अरफ्ता व मल्लम तारिफ, चाहे तू उसे पहचानता हो या ना पहचानता हो, तेरी पहले से दोस्ती हो या ना हो, बेतकल्लुफी हो या ना हो, तो बेहतरीन इस्लाम ये है कि तू जो है वो सलाम करे। फिर इसी तरह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी बताया कि मोहब्बत जो है वो कैसे बढ़ती है। फिर जन्नत में जाने की चाबी क्या है, जन्नत में जाने का गुर क्या है, तरीका क्या है? फरमाया ला तदखुलूनल जन्नत हत्ता तुमिनू, कि तुम लोग जन्नत में जा नहीं सकते जब तक के मोमिन ना बन जाओ, वला तुमिनू, और तुम मोमिन नहीं बन सकते हत्ता तुहाबू, जब तक के तुम वहां मोहब्बत ना करने लगो। फिर पर पूछ कहा अवला अदुल्लुकुम अला शैन, क्या मैं तुम्हें ऐसी बात ना बता दूं, क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज पर दलालत ना करूं, क्या मैं तुम्हें ऐसी तदबीर ना बताऊं, क्या मैं तुम्हारी रहनुमाई ना करूं, ऐसी चीज पर इजा फाल तुमूहु, जब तुम उसको करोगे, तहाबब तुम, इजा फाल तुमूहु तहाबब तुम, जब तुम उसको करोगे तो आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करने लगोगे। अब आप देखें यहां तक हदीस में कि तुम जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते जब तक कि मोमिन ना बन जाओ, तो मोमिन ही बन सकते नंबर दो जब तक कि मोहब्बत ना करने लगो, नंबर तीन उस वक्त तक तुम मोहब्बत ही नहीं कर सकते जब तक कि वो काम ना करने लगो, और वो काम क्या है, अफशु सलाम बैनकुम, कि तुम आपस में जो है वो सलाम जो है उसको फैलाओ, अफशु, आप कहते हैं ना राज अफशम कर दिया, तो क्या है सलाम जो है उसको ज्यादा से ज्यादा आपस में आम करने लगो। तो ये है इस्लाम की रूह। तो अब वो लोग जो गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग और फिर ये के सर आगे कर देंगे या हिंदुआना तरीके से हिंदुआना तहजीब के मुताबिक अपने आगे बढ़ेंगे, आदाब तस्लीमात नहीं कहेंगे तो सलाम नहीं कहेंगे। तो बहुत जरूरी है ये बात के सलाम जो है तो इसको आम किया जाए। और इस बात पर भी आप सोचें कि सलाम को करना ये क्या है, तकरार अल्लाह ताला कर रहे हैं, बार बार बात कह रहे हैं, और जब किसी चीज की बार बार तकरार है और अल्लाह की तरफ से है तो इसी में मेरे और आपके लिए खैर है ना। और जो मैंने भी हदीस आपको सुनाई कि अफशु सलाम बैनकुम, ये इमाम मुस्लिम की रवायत है, और इसमें जितने सीगे हैं ना ऐसे सीगे हैं कि कुछ लोग यानी क्या है हत्ता तुहाबू और फिर तहाबब तुम अफशु, यानी कुछ लोग आपस में इसको जो है वो रवाज देना। और सहाबा की एहतियात का ये हाल हो गया था कि अगर कोई दीवार की ओट में भी हो जाता था ना फिर दूसरे को सलाम करता था, जितनी दफा आते थे उतनी दफा सलाम करते थे, अपने घर में जाएं, रिश्तेदारों के घर में जाएं, दोस्तों के घर में जाएं, तो खाना खाने के आदाब के साथ साथ जो अहम चीज क्या है कि तुम्हारी गुफ्तगू की इब्तदा, तुम्हारा मिलना उसकी इब्तदा सलाम से होनी चाहिए, तुम्हारी कलाम जो है ना उसकी पहचान क्या है कि अस्सलामु अलैकुम। और आप देखें कि सलाम करने का की असल रूह क्या है, सलाम की असल रूह यह है कि जब आप सलाम करेंगे तो उसका मतलब यह है कि आप दूसरे को ये बता रहे हैं कि तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा माल और तुम्हारा घर सब चीजें मेरी तरफ से उनको सलामती है, मैं उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, तुम पर मेरी तरफ से कोई तंगी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। अब आप वहां पे जाके जब सलाम करते हैं तो आप ये पैगाम देते हैं कि तुम मेरी तरफ से पीस में हो, अमन में हो, है ना। और फिर आप ऐसा कैसे होगा कि उसकी इज्जत या उसका माल या उसका खाना या उसकी चीजें जो है ना उनको नुकसान पहुंचाएं। तो ये एक आपकी पहचान है इस्लामी सोसाइटी की, इस्लामी माशरे की। अच्छा फिर आगे अहम बात यह है कि जब अल्लाह ने इसको मुकर्रर कर दिया तहिया तम मिनिंदिल्ला, तो पहली चीज हमें क्या पता चली कि ये अल्लाह की तरफ से तोहफा है। आदम अलैहिस्सलाम से सलाम की इब्तदा हुई कि जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो फिर उनसे जो है वो क्या क्या बात थी कि वो सलाम करें, फरिश्तों को सलाम करें, सलाम की इब्तदा हुई। दूसरी बात ये, जब अल्लाह इसको तोहफा कह रहा है तो फिर दुनिया में सोसाइटी में किसी से जब मिले हेलो हाय जितने भी उसके तौर तरीके हों तो इससे बढ़कर बेहतरीन तोहफा फिर कोई नहीं हो सकता ना। तो हमें हेलो हाय की बजाय सलाम को रवाज देना चाहिए और अपने बच्चों को बताना चाहिए कि सलाम जो है ये हमारी पहचान है, ये हम इस्लामी शियार है मुस्लिम सोसाइटी का, पता चल जाता है कि ये मुसलमान है। दूसरी चीज क्या है, मुबारकतन, ये मुबारक है। और आप देखें कि बरका, मैंने आपको बताया था ना बरका किसको कहते हैं, ऊंट के सीने को कहते हैं ना, हाँ ऊंट के उभार को। अब ऊंट जो है जब कहीं बैठ जाता था तो समझा जाता था बड़ी बरकत है, बड़ा बेहतरीन जानवर है, बड़ा जो है वो मुनकसरुल मिजाज। तो अब ये कि सलाम जो है ना इसमें भी बड़ी बरकत है। और ये जो बरा का लफ्ज है इसके अंदर जो है कसरत और ज्यादती भी पाई जाती है और इसके साथ सिबात और बका भी पाया जाता है, यानी गोया के सलाम की वजह से ये जो अल्लाह ताला ने कहा मुबारकतन, तो इसके मानी है कि सलाम की वजह से बड़ी बरकत होगी, بڑی فراوانی ہوگی، کمال درجے کی تمہارے تعلقات میں پائیداری آ جائے گی، ہے نا؟ تو تم بڑے بلندی میں چلے جاؤ گے اخلاق اور کردار کی، تم دوسروں کے دلوں میں تمہاری بڑی عظمت اور بزرگی پیدا ہوگی۔ تو یہ ہے مبارکتن، بڑی مبارک یہ جملہ ہے، اور ساتھ ہی کہا طیبہ، یہ پاک ہے۔ اور آپ سوچیں کہ یہاں پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم سلام کو عام کریں گے، اب ہم گھر میں داخل ہو رہے ہیں، کوئی بھی نہیں ہے، پھر سلام کریں کہ نہیں کریں؟ پھر بھی سلام جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ اچھا، اب جب آپ سلام کریں گے تو اس وقت پھر سلام کرنے کا آپ کا طریقہ اور انداز جو ہے وہ کیا ہوگا، کیسے سلام آپ کریں گے؟ آتا ہے کسی کو کہ خالی گھر ہے تو خالی گھر میں سلام کرنے کے کیا الفاظ ہمیں پتا چلتے ہیں؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو ہے وہ ادب المفرد جو ہے اس میں نقل کیا کہ جب ایسی جگہ آپ جائیں جہاں پہ کوئی بھی نہ ہو، خالی گھر ہے، تو آپ پھر ایسے سلام کریں گے، السلام علیکم علینا، یعنی جو ہے وہ ہم پر جو ہے وہ سلامتی ہو، السلام علیکم علینا، کہ ہم پر جو ہے وہ سلامتی ہو، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں یہ لفظ بھی ملتا ہے کہ وعلیکم، اور تم پر۔ تو پھر اس سے کون جو ہے وہ ہمیں پتہ چلتا ہے، کہتے ہیں کہ نہیں، السلام علیکم علینا وعلی عباد الصالحین، ہم پر سلامتی، اور علیکم کی بجائے کیا کہنے ہیں، وعلی عباد الصالحین، اور نیک لوگوں پر جو ہے وہ سلام ہو۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فرشتے موجود ہیں تو ان پر جو ہے وہ سلام ہو، تو کوئی نظر نہ بھی آئے تو کہتے ہیں کہ فرشتوں کی موجودگی کا خیال کرنا چاہیے اور سلام کا پاکیزہ اور مبارک کلمہ جو ہے اس کو ادا کرنا چاہیے، اور اس کی ادائیگی سے سوسائٹی کے اندر ہمدردی، اخوت، سلامتی، محبت، بھائی چارے کی فضا جو ہے وہ پیدا ہو جائے گی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ تحیہ ہے، تحیتن تحفہ ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مبارکتن ہے، تیسری بات ہے طیبہ۔ اور کہا کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تاکلون، اسی طرح اللہ تمہارے سامنے اپنی آیات بیان کرتا ہے اس امید پر کہ تم سوجھ بوجھ سے جو ہے وہ کام لوگے۔ اور اچھا، میں غور کر رہی تھی کہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں کہ میں نے آیات کو واضح کیا نا، بات پردے کی ہو، کھانے پینے کے آداب کی ہو، بات گھروں میں داخل ہونے کے طریقے کی ہو، بار بار اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا، کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تاکلون، اس طرح اللہ تمہارے سامنے آیات بیان کرتا ہے، توقع ہے کہ تم سوجھ بوجھ سے جو ہے وہ کام لوگی یا کام لوگے۔ دونوں باتیں ہی اپنی جگہ جو ہے وہ بڑی اہم ہیں۔ اور آپ میں یہ جو پیچھے 11 لوگوں کی فہرست گنوائی گئی ہے کہ جہاں سے جن گھروں سے کھانا کھایا جا سکتا ہے، تو اس میں اگر آپ غور کریں گی، اور میں غور کر رہی تھی، تو بیٹوں کا ذکر کہیں نہیں ہے نا، بیٹے یا بیٹیاں، ان کا ہمیں ذکر جو ہے وہ نہیں ملتا۔ تو اس کی کیا وجہ ہے کہ اسلام نے جو ہے وہ بیٹوں اور بیٹیوں کا ذکر کیا ہی نہیں؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بیٹے اور بیٹیوں کے گھر سے جو ہے وہ کھا ہی نہیں سکتے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹے اور بیٹیوں کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ بیٹے اور بیٹی کا گھر انسان کا اپنا ہی گھر ہے۔ کیوں؟ ہمیں مسند احمد کی روایت سے پتہ چلتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا، انت و مالک لابیک، کہ جا تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، ہے نا؟ تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں کہا جو ابو داؤد کی روایت ہے، آپ نے کیا فرمایا، ولد الرجل من کسبہ، آدمی کی اولاد اس کی کمائی سے ہے، یعنی گویا کہ آدمی کی اولاد بھی اس کی کمائی ہے۔ تو اس لیے بیٹا ہو یا بیٹی تو ان کے گھر سے کھانے میں جو ہے اس میں بھی کوئی تنگی نہیں ہے۔ اور ہمارے ہاں بیٹیوں کے گھر سے والدین نہیں کھاتے، بعض تو انہوں نے پانی کا گھون بھی پینا حرام کیا ہوا ہے، کھانا بھی نہیں کھانا، وہ بیٹی کے گھر نہیں رہنا۔ ابھی ایک عورت کے والدین بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، تو کہتی اتنا چاہ رہی ہوں کہ میرے گھر میرے والدین آ جائیں، میرے شوہر بھی چاہتے ہیں، میرے بچے بھی چاہتے ہیں کہ ہم مل کر اب ان کی خدمت کریں لیکن وہ کہتے ہیں نہیں بیٹی کے گھر نہیں جانا. تو اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ایک طرف جو شوہر ہیں جس طرح سے وہ یہ چاہتے ہیں نا کہ ان کے والدین کی ان کی بیویاں خدمت کریں ان کی جنت کی, تو اسی طرح عورت کی جو جنت ہے ایک طرف شوہر کی جو جنت ہے شوہر کی خدمت کرنا اسے جنت مل سکتی ہے, دوسری طرف والدین دونوں کے لیے کہا جا رہا ہے نا وہ بالوالدین احسانہ, یا پھر یہ کہ ماں جو ہے وہ بیٹی کی ہو یا بیٹے کی دونوں کی وہ جنت ہے. تو شوہروں کی طرف سے بھی جو ہے وہ گھروں کے اندر ایسا ماحول اور فضا ہونی چاہیے کہ والدین بوڑھے ہیں بیمار ہیں یا چند دن مہمان کے طور پر آ کر جب وہ رہیں تو وہ محبت پیار حسن سلوک جو ہے ان سے اس طرح سے کریں کہ بیگانگی کی جو ہے وہ کیفیت پیدا نہ ہو بلکہ تکلف کی بجائے جو ہے محبت اور بے تکلفی کی کیفیت جو ہے وہ پیدا ہو. تو یہ ساری وہ آیات ہیں کہ اگر میں اور آپ ان پر عمل کریں گے تو اس کے نتیجے میں پھر ہمیں کیا فائدہ ہوگا کہ ہمارے گھر جو ہیں وہ جنت کا نمونہ بن جائیں گے. اور اب اصل عقل کی بات یہ نہیں ہے کہ جہاں کھانے پر جائیں اگر یا ویسے ہی کہیں جائیں تو واپس ساتھ بھی لے کر آئیں تو یہ عقل کی بات ہے, نہیں, بلکہ کیا ہے, خیال رکھنا دوسروں کا, دوسروں کے احساسات کا, دوسروں کے جذبات کا, اور معذوروں کا خیال رکھنا, اور آپس میں مطلب جیسے بھتیجی ہے بھانجی ہے بیٹی ہے بہو ہے یا جو بھی رشتہ دار یہ سارے گنوائے ہیں آپس میں آئے جائیں تو ایک بے تکلفی کی کیفیت ہونی چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ پردے کے جو حدود ہیں ان کو کراس نہیں کیا جائے گا. یہاں پہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ اب پردے کے حدود ختم ہو گئی ہیں, بلکہ یعنی پردے کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کے آداب آپس میں ایک دوسرے کے گھر میں داخل ہونے کے آداب بتائے جا رہے ہیں. یہ ہے کذالک یبین اللہ لکم الآیات, میرے اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے آیات کو کھول کھول کر بیان کر دیا. آپ دیکھ لیں اس کے باوجود میری اور آپ کے گھروں کے اندر جو ہے وہ اسلام پر عمل کرنے میں ابھی کتنی زیادہ جو ہے وہ کمی پائی جاتی ہے. تو آئیے ہم اپنی سوسائٹی کو اپنے گھروں کو اپنے خاندانوں کو اسلامی سوسائٹی بنا دیں, ہے نا. تو کسی بھی چیز میں نا انتہا نہ کریں, غلو نہ کریں کہ مل کر نہیں کھا سکتے ہمیشہ. بعض اوقات اس یہ بھی ایک غلو ہے کہ مہمان جب تک ساتھ نہ ہو تو کھانا نہیں کھائیں گے. کہتے ہیں بعض قبیلے عربوں کے ہاں انتظار کرتے تھے کہ کوئی آئے اور نہ آتا تھا گھوڑا لے کے نکلتے تھے کہ کوئی کہیں ارد گرد سے نظر آ جائے تو پھر جو ہے وہ کھانا کھائیں گے, اور بعض جو ہے مل کر جب اکٹھے ہو گئے تو کھاتے ہی نہیں تھے. تو کسی بھی چیز میں نا انتہا نہ ہو, کبھی مل کر کھا لیں کبھی تنہا کھا لیں, جب مل کر بھی کھائیں تو ایک دوسرے کا جو ہے وہ خیال رکھیں.